الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذا أعدا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی محترم علامہ باقر رضا صاحب، میرے محترم جناب قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب، میرے انتہائی محترم مہتاب اظہر صاحب، محترم علی حسین بھائی، علماء اکرام، قائدین اکرام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، نوجوانوں، میں مجلس وحدت مسلمین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتحاد اور وحدت، جو وقت کی ضرورت ہے، اور علماء اکرام نے بہت اچھی گفتگو یہاں کی ہے، اس میں اضافے کی گنجائش بہت کم ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ علامہ اقبال نے بھی ارشاد فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور میرے دوستو، ذرا اس اتحاد اور وحدت کے حوالے سے اس دنیا کا منظرنامہ آج سب کے سامنے، وہ 15 مارچ کو نیوزی لینڈ کی مساجد میں، جب کوئی اسلامو فوبیا کا ذہن اندر داخل ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، کسی سے نہیں پوچھتا تم سنی ہو کہ شیعہ ہو، تم دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو، تمہارا مسلک کون سا، وہ صرف مسلمان کو دیکھتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں 50 سے زائد لوگوں کو شہادت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ میرے دوستو، ایک منظر یہ نظر آ رہا ہے، تو پھر جب اسلامو فوبیا کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے مسلمانوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں داعش کو اٹھایا جاتا ہے، سری لنکا کے اندر ایسٹر کے تہوار کے اوپر کوئی سی آئی اے، کوئی رو یہ کام کرواتی ہے کہ اس اسلام کے چہرے کو بگاڑا جائے، لیکن سب جانتے ہیں کہ گلے کاٹنا یہ کسی مسلک کے اندر جائز نہیں، یہ انسانوں کو جلا کر مارنا اور معصوم انسانوں کو عبادت کرتے ہوئے، چاہے وہ چرچ کے اندر ہوں، چاہے وہ سائناگوگ کے اندر ہوں، چاہے وہ کسی مندر کے اندر ہوں، یا किसी और माबत के अंदर हों। इसलिए ये कैसे जायज़ हो सकता है कि किसी इमाम बारगाह को निशाना बनाया जाए? इसलिए ये कैसे जायज़ हो सकता है कि किसी मस्जिद को निशाना बनाया जाए? मैं तफसील में नहीं जा रहा, वो जितने जिम्मेदार हैं उन सब के बारे में हिलरी क्लिंटन का एतराफ मौजूद है, दाइश को उन्होंने पैदा किया। और फिर अभी हफ्ते भर पहले मैंने ये देखा कि वो जो इस दुनिया के अंदर अपने आप को खादिमुल हरमैन कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में कैसे गुफ्तगू करता है और कैसी शर्मनाक अंदाज में जब उनसे बात करता है, वो कहते हैं कि मुझसे तो आज तक इस लबो लहजे में कोई किसी ने बात नहीं की। ऐ काश वो अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ते। अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया था, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। इसलिए ये इज्जतें अगर नीलाम हुई हैं इसी वजह से हुई हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में एक इत्तेहाद मौजूद था, एक वहदत मौजूद थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक है, कुछ बादशाहतों ने अपने तहफ्फुज के लिए इन मुसलमानों को तकसीम किया है, इसलिए जो कत्लेआम हो रहा है, मेरे भाई बाकर रजा जैदी ने बहुत खूबसूरत इशारा किया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसानी तारीख का मुताला करें तो आज की इंसानी तारीख में 1977 से पहले, 1977 के बाद, और शायद सालों से बात समझ में ना आए तो बात समझने की ये है कि इमाम खुमैनी की आमद से पहले और इमाम खुमैनी की आमद के बाद दुनिया का मंजरनामा जुदा है। और इस दुनिया के अंदर वो साम्राज्य के जो पहले अनचैलेंज्ड था, आज अनचैलेंज्ड नहीं है। फिक्र खुमैनी है कि जो उसको रोज ही नहीं हर वक्त चैलेंज करती है। ये जो आज के ट्विटर पर आपको गजा का ट्रेंड नजर आ रहा है, और अभी बताया गया कि 150 रॉकेट हैं जो गजा से इसराइल के अंदर गिरे हैं, ये सिर्फ रॉकेट नहीं है, ये फिक्र इमाम खुमैनी है। और ये फिक्र इमाम खुमैनी ना इसराइल को बाकी रहने देगी और ना इंशाल्लाह उसका बाप अमरीका बाकी रह सकेगा। इसलिए
अल्लाहु अकबर।
इसलिए मेरे दोस्तों मैं अर्ज करूंगा कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र पर अनवार की बारिश फरमाए। उन्होंने उम्मते मुस्लिमा को मिनहज दिया, उन्होंने उम्मते मुस्लिमा को मकसद दिया। और रमजानुल मुबारक, जुम्मतुल विदा, पूरी दुनिया के अंदर यौमुल कुद्स के उनवान मनाया जाता है। ये तसव्वुर कि तुम्हारा दुश्मन एक है, ये तसव्वुर कि तुम इस दुनिया के अंदर बर्पा किए गए हो तो फिरौनियत को खत्म करने के लिए, इस दुनिया के अंदर नमरूदियत को खत्म करने के लिए और हर किस्म की यजीदियत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। इसलिए इसलिए आज का ये मार्का अगर मौजूद है तो एक तरफ साम्राज है और दूसरी तरफ फिक्र इमाम खुमैनी है। और मैं आपसे कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र इमाम खुमैनी के रास्ते में आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम हुर्रियत पसंद अपनी जगह पर मुत्तहिद हैं। हाँ, उनसे मत परेशान होइएगा कि जो अपने अपनी बादशाहतों को बचाने के लिए साम्राज्य के जूते चाट रहे हैं, और यही वजह है कि अपने लिए भी और उम्मत के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। गजा पर हमला होता है, हम तलाश करते हैं कि कहीं कहीं सऊदी अरब के बादशाह की तरफ से भी बयान आए, इसराइल की मजम्मत में बयान आए, लेकिन हमें अफसोस होता है कि वहां का वजीर खारजा खड़े होकर कहता है कि सऊदी अरब और इसराइल एक पेज पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुख्तलिफ फजाई रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, सफारती ताल्लुकात बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन इसराइल इस जमीन के ऊपर सबसे बड़ा नासूर है, और एक ही जगह नहीं, हर जगह पर ये मौकिफ इलाही मौकिफ आपको नजर आएगा। यही वजह है कि साम्राज्य आज ईरान की तिजारत को बंद करने की बात करता है, उसके मुआशी घिराव की बात करता है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि दाएश और इन जैसे बहुत सारों को खुली छूट दी जाती है। लेकिन मैं मजलिसे वहदत का शुक्रगुजार, इंशाल्लाह इत्तेहाद का ये पैगाम आगे बढ़ेगा, फिक्रे इमाम खुमैनी अपनी फतह तक आगे बढ़ेगी, और इंशाल्लाह शिकस्त साम्राज्य का मुकद्दर बनेगी, और फतह गुलामाने मुस्तफा का नसीब। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।